ओम शांति। मैं कह रहा था आज तो हमारी गीता पाठशाला रह गई बाबा की मुरली, आज भी और कल की तो बहुत सुंदर थी। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, किसको उत्तर याद है सवेरे की मुरली का? मैं तुम्हें गीता ज्ञान तब तक देता रहूंगा जब तक तुम रजाई न ले लो। डॉक्टर ने ठीक बताया, जब तक तुम रजाई न ले लो। लेनी है रजाई पक्का? क्या करना पड़ेगा उसके लिए सोच लो, क्या करना पड़ेगा? हमारी मूल नेचर क्या है? पवित्रता। आज की मुरली से शांति भी है पर पवित्रता। आज बाबा ने किसी अवगुण वालों को बहुत कड़ा टाइटल दे दिया। मैं दोनों ही नहीं बोलूंगा, दोनों ही बोलो। छोटे लाल बोल रहे थे क्रोध, टाइटल क्या दे दिया? बड़ा भारी टाइटल दे दिया। वैसे तो असुर शब्द का अर्थ जो हिंदी में है ना, वो राक्षस नहीं है। असुर माना जो देवता नहीं है, है सुर, सुर माना देवता, जो देवता नहीं है। कभी भी अशांति नहीं फैलानी है क्योंकि तुम शांति स्थापित कर रहे हो। आज की मुरली की, तुम यहाँ सन्यासी बनने नहीं आए, विश्व का मालिक बनने आए हो। बाबा जोर शोर से नशा चढ़ाता है, कल परसों था ना मुरली में, जोर शोर से नशा चढ़ाता है। होता है नशा, बहुत आ रही है ये बात। मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूँ। किन्हें मिलेगी विश्व की बादशाही? कल एक छोटी सी लाइन और थी, कल थी बाबा से सब खजाने प्राप्त करना, भगवान और भाग्य याद करो, बाप से वर्षा और सदगुरु से वरदान लो, और ऐसी बहुत सारी बातें थी। लेकिन एक बात और थी जो हमारे जीवन से जुड़ी है, जिस जीवन में खुशी नहीं वो जीवन भी क्या? ठीक है खुशी सबको? कुछ माताओं को नहीं है, मुझे दिख रहा है, चेहरों से दिखता है। उदाहरण बताता हूँ, आज किसी का फोन आया, मैं पूछता नहीं माताओं से तुम कौन हो, कहाँ से हो, ताकि वो अपनी बात कह सकें। कहा मैं बहुत बीमार हूँ, फिर आप ही कहा कि मुझे ऐसा लगता है मेरी बीमारी की कारण मेरी चिंताएं हैं। खुद ही बताया कि मुझे ऐसा लगता है लड़का और लड़की बड़े हो गए हैं, दोनों की चिंता। मैंने कहा तुम्हारा पति वो चिंता नहीं करता? वो नहीं करता, कभी की बात है शाम को ही। तो ये जो चिंता मनुष्य लेकर सिर पर घूमता है, इसके लिए कल बाबा ने क्या कहा था? इसे पहले कुछ कहा, अलवेलापन और बोझ, दो बातें इससे पहले कुछ था। क्या आदत है तुम सब में? भक्ति के संस्कार। बोलो, वो तो एक था, थोड़े में खुश हो जाते हो। जब बाबा कह रहा है सारे बोझ मुझे दे दो, फिर भी देते नहीं। चिंतन करना है इस पर, मैं भी चिंतन करता आया हूँ। बोझ सारे बाबा को दे दो, देने आते हैं। यहाँ भी कई माताओं के सिर पे बोझ हैं, मैं बताऊंगा नहीं किस किस के पे है, पर चेहरे दिखा रहे हैं। जिनके सिर पे बोझ है उनको बीमारियां ज्यादा हैं। सारा बोझ अपने सिर पे ले लिया, पति को मुक्त किया हुआ। तुम आनंद बनाओ, बच्चे मेरे हैं और इनकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। हैं तो आपके ही, वो किसी और के नहीं हो जाएंगे। तो बोझ बाबा को देकर डबल लाइट रहेंगे, चिंतन करना इस पर। बोझ एक दबाव है जीवन पर, दिमाग पर एक दबाव है जो खुश नहीं रहने देता, जो सच्ची शांति का अनुभव भी नहीं करने देता, जो पुरुषार्थ में उड़ान भी नहीं भरने देता। वास्तव में बोझ होते नहीं, बोझ महसूस करते हैं कई। बात छोटी है पर महसूसता ज्यादा है। जब ज्ञान में आते हैं तो थोड़ी ज्यादा करते हैं। एक बहन का पति 20 साल से उससे अलग होता है किसी और के साथ, अब ये ज्ञान में आ गई, अब कल पूछ रही थी मैं उसको वापिस लाना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों, 20 साल में नहीं चाहा वापिस लाना? के नहीं, अभी बाबा का बनाना उसको। भावना तो अच्छी है पर ये माया भी है। इन सब चीजों से मुक्त हो जाए। मुक्त होना अपने हाथ में, नहीं तो बहुत कष्ट होगा। कब होगा कष्ट? अब भी हो रहा है लेकिन विनाश काल में बहुत कष्ट होगा। मोह ममत्व भी सबसे ज्यादा दुख देगी संसार में। और जिनके पास मोह ममता ज्यादा है, मेरा मेरा ज्यादा है, वो बहुत कष्ट पाएंगे। परसों था ना मुरली में, घर जाना है, ममत्व पूरी तरह निकाल दो। भगवान भी सोचेगा मैंने तो इनको कितना समझाया पर ये निकाल ही नहीं पाते। क्यों नहीं निकाल पाता मनुष्य मोह ममत्व को? जरा गहराई में चलो। ये नहीं वो माताओं में है, वो सब में होता है। क्यों नहीं निकाल पाता? और बताओ हैं? एक एक बोलो बोलो। 63 जन्मों के संस्कार है, ये भी उत्तर ठीक है। और आप क्या कह रहे? नहीं, क्यों नहीं निकाल पाता मोह? देह भान ज्यादा है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, कईयों को बहुत कुछ होते भी जीवन में खुशी नहीं रहती। दो आत्माएं मिली कल, रास्ते में घूम रहा था ज्ञान सरोवर में, कहा भाई जी हम तो कभी ऐसे दीदी हो ही नहीं पाते। मैंने कहा क्यों? उनको खुशी नहीं थी, उनको किसी ने बताया हुआ है शरीरीपन ये है, तो उनको मन में बैठ गया है कि हम तो कभी शरीरी हो ही नहीं पाते। मैंने कहा क्या है शरीरीपन? कि बिल्कुल ऐसे बैठ जाएं जो उस दिन बाबा ने कहा। सुन आसपास क्या हो रहा है, वहां चिड़ियां चूं चूं कर रही थी, ये भी पता न चले। सुन ऐसे हो जाएं, सुई भी कोई चुभो दे तो पता न चले। मैंने कहा इंजेक्शन वालों को बड़ा फायदा हो जाएगा फिर तो, लगाने वालों को डॉक्टर मजा आ जाएगा उन्हें। अब वो खुश नहीं थे जीवन में, दोनों बहनें बिल्कुल खुश नहीं कि हम तो कभी ऐसा दीदी हो ही नहीं पाते, हमें तो कुछ प्राप्ति नहीं उस जीवन में। जब मैंने उनको समझाया ये ऐसा दीदीपन नहीं, ये तो मृत्यु है। शरीर में रहते हुए चारों ओर क्या हो रहा है ये जानते हुए भी आत्मिक स्मृति, चारों ओर क्या हो रहा है ये जानते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त का डेफिनेशन भी उन्हें बताइए, आपको बता देता हूँ। व्यक्त सभी आकर्षणों से मुक्त, व्यक्त भावों से मुक्त, व्यर्थ बातों से मुक्ति है अव्यक्त स्थिति। और कुछ नहीं कि हम डेड हो जाएंगे कोई, ऐसा कुछ नहीं है। डेड होना नहीं है, नहीं तो आपके पति आपको घर से निकाल देंगे कि डेड होना तो वहीं चल जाओ, वहीं मरना जाके, यहाँ क्यों परेशान कर रही है हमें। डेड होना ऐसा दीदी पर नहीं है, पता है सभी माताओं को? पता है ना, चेतन अवस्था। उस दिन बाबा ने कहा सुन सुन का अर्थ है परम धाम की जो डीप साइलेंस है उसका अनुभव करना। दो दिन बाद ही आ गया था, सुन नहीं होना है, क्योंकि कईयों ने गलत समझ लिया, बिल्कुल डाउन हो गए, सो गए, सुन हो गए। तो भगवान को भी सोचना पड़ा, हो गया तो गड़बड़ हो गई, मैंने कह तो दिया सुन सुन के ही सुन हो गए। तो हर चीज को ठीक से समझ, राजा ही दे रहा है बाबा हमें, सुन वालों को थोड़ा ही राजा ही मिलेगी। राजाओं को क्या होता है जीवन में बताओ, धारणाएं, शक्तियां बहुत, रुहाव बहुत, उनकी चाल से ही पता चलेगा कि ये रॉयल परिवार के हैं। और क्या होगा, बहुत बुद्धिमानी, बहुत पालना के संस्कार, अपनी पूरी प्रजा के लिए अलर्ट, ऐसे ही राजा थोड़ा ही बन जाएंगे। सबके लिए शुभ भावनाएं, पालना करने की वृत्ति, सबको खुश संतुष्ट रखने की भावना, जो बाबा हमें सिखाते हैं, ये राजा ही गुण ही तो सिखाते हैं रोज, सबको संतुष्ट करो, सबको सुख दो, पालना करो सबकी, ये राजा ही गुण सिखा रहे बाबा। इसलिए बाबा ने कहा, मैं तुम्हें गीता ज्ञान तब तक देता रहूंगा जब तक तुम राजाई प्राप्त न कर लो। कितनी अच्छी बात है। तो मुरली सभी इस दृष्टि से सुना करें कि भगवान हमें कुछ याद दिलाता है रोज, कुछ प्रेरित करता है, तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर क्या क्या है, प्योरिटी तुम्हारा मूल संस्कार है, उसमें आ जाओ। जैसे किसी का क्रोध करना संस्कार बन गया, वो भी मूल बन जाता है ना, उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, बात बात में क्रोध आएगा, प्योरिटी के लिए भी सोचना नहीं, वो हमारा नेचुरल संस्कार है, उसको इमर्ज करेंगे तो प्योरिटी एक आनंद बन जाएगा जीवन का। क्रोध हमें बिल्कुल ना हो, पहले कम हो फिर खत्म हो, क्योंकि बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा को गुस्सा आता है नहीं, क्यों, शरीर नहीं है। बाबा से किसी ने पूछा था ना, यही इसी हॉल में जहां मैं बैठा हूँ यही बाबा बैठते थे, ये बीच की संदली बाबा की होती थी, दो साइड में होती थी, उधर मामा बैठती थी, किसी को बैठाना इधर बैठा दे दे। तो बाबा से किसी ने पूछा, आपका मंदिर महमूद गजनवी ने लूटा था, आपको गुस्सा नहीं आया, सीधा पूछा। बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, अब उसने आगे तो पूछा नहीं क्यों नहीं आया, पर मैंने सोचा कि भगवान को तो गुस्सा करना आता ही नहीं ना, गुस्से का सागर थोड़ा ही, वो तो प्यार का सागर है, लूट लिया तुम भी खुश रहो, जाओ इधर और माल बहुत है। और आप लोगों ने तो कहानियां नहीं सुनी, पर महमूद गजनवी वो सब धनमाल ले नहीं जा सका अपने, अफगानिस्तान में था वो, गजनी एक सिटी उसका, वो राजा था, वो ले जा नहीं सका था, यहाँ के दो तीन राजा मिल गए थे और उसको उतार दिया था रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में जो धूल की आंधी चली वो सब वहीं दब वब गए थे, थोड़े से सैनिकों के साथ वो भूखा नंगा खाली हाथ, प्यार पानी भी नहीं था, अपने वहां लौटा था कि जान बच गई यही बहुत है, ले नहीं जा सका वो, इसलिए वो सब रेगिस्तान में दबा हुआ है माल, सब धरती में ही है। सतयुग का जो माल था वो कहीं गया नहीं, सोना कोई पिघलता नहीं, जलता नहीं, मिट्टी विट्टी चढ़ जाती है, थोड़ा काला हो गया होगा कहीं कहीं, बाकी वो सब यही है, सब माताओं के हाथ में आ जाएगा। तो क्रोध से पूरी तरह बचना है, आज हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं, ताकि बहुत खुशी रहे और बोझ बाबा को दो। जिन माताओं ने बोझ रखा है ना, अब बहुत अच्छा किया है, सेवाओं में आ गई, सेवाओं का बल भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जब अपने घर से निकलकर सेवाओं में आ जाएं, चाहे 15 दिन ही आए, उनकी भी महानता है और बल बहुत देता है बाबा। लेकिन बोझ सब दो बाबा को, अनुभव करके देखो, मान लो आप यहाँ हैं और आपको फोन आ गया कि बच्चे की तबीयत थोड़ी ढीली है, मम्मी को याद कर रहा है। अब बच्चे तो करेंगे, अब आपका क्या हाल होगा? आप कहेंगी कल ही मुझे तो भेजो जल्दी भाई। ये होता है कई माताओं को, भेजो जल्दी। जब एक बार विनाश की बात थी ना, तो तब यहाँ के सेवादारियों को मैं संभालता था, तो माताओं की क्लास हुई तो अनाउंस हुआ, पता नहीं वैज्ञानिकों ने अनाउंस किया था, और डेट भी मुझे ख्याल थी अभी भूल गई, इस दिन महाविनाश होगा। और वो माताओं ने कहा हम तो अपने घर जाते हैं। मैंने कहा क्यों? लोग तो कहते हैं मधुबन में शरीर छूटे, नहीं बच्चों के साथ छूटे। मुश्किल से उनको रोका कि विनाश नहीं होगा, अभी चिंता न करो, अभी तो स्थापना नहीं हुई है, अभी लड़ाई कहाँ लगी। विनाश ऐसे थोड़ा ही चुटकी बजाते ही रातों रात में हो जाएगा, हिसाब किताब चुक तो उन्हें, अभी तो वो पाठ चलना है जो मुरलियों में आप सब भी रोज सुन रहे हैं, जो साक्षात्कार का पाठ आदि में चला था वो अंत, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो वो भी बहुत बड़ा चलना है। तो मान लो आपके पास फोन आता है बच्चा बीमार है, अभी दो स्थिति हैं कि एक है आप परेशान हो जाएं, सारी रात सोए भी नहीं, फोन करते रहें, इसको उसको सारा बोझ अपने सिर पे ले लें, और दूसरा है नहीं बाबा को सौंप दे कि ये बोझ तुम्हारा, अब तुम देखो जरा तुम्हारा बच्चा है ठीक करो, सवेरे आपको संदेश मिलेगा ठीक हो गया। और अगर आप सारी रात सोई नहीं और परेशान रही और यहाँ फोन वहां फोन, दुखी उनको भी दुखी, तो अगले दिन मैसेज मिलेगा सीरियस हो गया जल्दी आ जाओ। अनुभव करो, अपने जीवन को अनुभवों की खान बनाया जा सकता है इस एक बात से कि बोझ मुझे अर्पित करो भाई, कोई और कर दे माता होगा, थैली में होगा ना अंदर, फिर आए तो सुना ना बाहर जाके। तो बोझ बाबा को देने से क्या परिणाम निकलता है, भाई लोग भी करेंगे। कोई भी बोझ आ गया, पैसे की बात आ गई, काम धंधों की बात आ गई, परिवारों में बीमारियां और कोई भी घन, बाबा को दो और परिणाम देखो, उसे अनुभव बढ़ेंगे, विश्वास बढ़ेगा और आदत पड़ेगी। जैसे मैं एक चीज और सिखाता हूँ सबको, क्योंकि उसके मैंने बहुत अच्छे अनुभव किए कि बाबा को बुलाया करो, आह्वान, और देखो क्या होता है, तो सुंदर सुंदर अनुभव हो गए सबको। तो दूसरों के अनुभव सुन के मुझे भी हो गया कि बाबा को बुलाना सबसे सहज विधि है और वो आएगा। देखो उसने क्या कहा, आप सबने रखा होगा, यहाँ तो चित्र नहीं है, जब भी कठिनाई आए प्यार से कहो मेरा बाबा और आ जाओ मदद करो। तो आगे की लाइन क्या है, बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए, इसके प्रयोग करो। देखो क्या होता है अगर हम बाबा को बुलाते हैं और अधिकार से कहते हैं मदद करो। आपके बच्चे को तकलीफ हो गई रात को, कोई साधन नहीं हॉस्पिटल ले जाने का, डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, बाबा को बुलाओ सुप्रीम सर्जन के रूप में, आ जाओ मेरे बच्चे को ठीक करो। सुप्रीम सर्जन हो आप, वैद्यों के वैद्य हो, करेगा ठीक या नहीं? अनुभव करो, बहुत सुंदर अनुभव होंगे कि बाबा को बुलाते ही समस्याएं हल्की, बाबा को बुलाते ही हम सुरक्षित, आगे विनाश काल में ये चीजें काम आएंगी। इसलिए आदत अब से डालनी है, कहीं भी आप जाएंगे अकेले हो जाएंगे, कोई नहीं है, गोलियां चलने लगी, भगदड़ मच गई, कहां भागेंगे, बाबा को बुलाओ सुरक्षित। ये अनुभव अभी से सभी भाई बहनों को बढ़ाने हैं। पसंद है? दो ही अनुभव ले लो, बाबा को अर्पित करना बोझ सारे और बाबा का आह्वान करना, दोनों को मिला भी सकते हैं। आह्वान करो, दे दो सब, ये समस्या आ गई है, तुम देखो जरा इसे संभालो। भक्ति में भी ये बातें चर्चित हैं, राम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में लोगों ने भजन बनाए हैं, गीत बनाए हैं। यही कहा है, तुम्हारा काम है तुम जानो, हम तो तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारे शरण पड़ी मैं, तो अब तुम देख लो क्या करना, मुझे कुछ नहीं आता। यहाँ की यादगारें बनी हुई हैं। क्रोध से हमें मुक्त होना है। माताओं के बीच में जो जगह थोड़ी भर लो, पीछे भीड़ हो गई है, लेट वाले भी आ रहे हैं ना, और भी आएंगे थोड़े, जो बिल्कुल लेट वाले उनको भी जगह देनी पड़ेगी। ठीक है, आप आगे आ जाओ, एकदम आगे बन जाएगी, अगर आए तो बनवा देना। अभी क्रोध से पूरी तरह मुक्त होना है, चिड़चिड़ा स्वभाव न बन जाए। कुछ भी बात हुई और गुस्सा आने लगे, परिवारों में देखो, पहले बच्चे मानते नहीं, बच्चे जिद करते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और माताओं की बच्चों के साथ जो समस्याएं आप ज्यादा जानते हैं, उसमें चिड़चिड़ा होंगे तो क्या नुकसान होगा? होता तो है, आजकल समय ऐसा है, सबके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, आपके ना पढ़े। बच्चों के पास एक माया आई हुई है आजकल, बड़ा बड़ा सा, आपने ही दिया है, माया दे दी उनको, लो लगे रहो इसमें, पढ़ना नहीं। अब बच्चे पूरा फायदा उठा रहे इस माया का। ये सब समस्याएं हैं, समस्याएं हैं। इसमें मन की स्थिति बिगड़े नहीं, मेहनत का काम तो है। मेरे पास आते रहते हैं, रोज आते हैं, आज भी आए, दो परिवार ऐसे आए, बच्चे उनके यहाँ नहीं है, प्रोग्राम में आए हुए, कहा कि हमारे बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं, बड़े हो गए अब सुनते नहीं। एक ने तो कहा मारपीट करते हैं, बाप को मारता है लड़का, शराब पी के आता है। मैंने कहा पैसा कहाँ से आता है? पैसा तो हम ही देते हैं। अब देखो डबल समस्या, पैसे न दें तो संघर्ष, दे दें तो पी के आके फिर संघर्ष। अब माताएं बेचारी दुखी हो जाती हैं। बात तो प्रैक्टिकल है ना, दुखों की भी। कौन चाहता है घर में ऐसा हो, जिन बच्चों को गोद में खिलाया है, पालना की है, जिनके लिए सारी सारी रात जगे हैं, वो ऐसा करें? कितना भारी लगता है। लेकिन अब इसमें संभलना है। क्या याद रखेंगे? बाबा ने जो बहुत सुंदर बात कही है, मन की स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। इसके प्रयोग कर लो आप। कहने से काम तो नहीं चलता ऐसे केस में। अब जो मैं ये बात बता रहा हूं आपको, मैंने पूछा उससे, आप उन्हें उसे समझाती तो होगी, समझाते हैं, पर बिल्कुल नहीं समझता, जिद्दी है और कहता है तुम तो बूढ़े हो गए हो, अभी ये ज्ञान ध्यान तुम्हारा काम है, हमने थोड़ा ही दुनिया देखी, उन्हें ही क्लास करा देते हैं। तो समझाने से काम नहीं चलेगा, केवल स्थिति से। आपकी स्थिति इतनी सुंदर हो कि आपके वाइब्रेशंस बच्चों को मिले, बच्चे स्वयं रियलाइज करें हम कहां गलती कर रहे हैं। कहने से रियलाइजेशन नहीं होता, इसलिए पक्का करना है सबको, स्थिति अगर बिगाड़ ली तो परिस्थितियां बिगड़ेंगी। समझ रहे हैं ना सभी? स्थिति बिगाड़ना नहीं है, अपने मन को इतना नाजुक नहीं बनाना है कि छोटी छोटी चीजों में परेशान हो उठें। अब क्या क्या याद रखें इसके लिए, जो गुस्सा भी ना आए और स्थिति भी ना बिगड़े। और भी तरह से बिगड़ती है, चिंताएं होती हैं, अब जब मारपीट घर में होने लगे, बच्चे ही बाप को मारने लगे, माँ को मारने लगे, तो लज्जा भी आती है, लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे। बोलो क्या क्या याद रखें जो स्थिति अच्छी रहे। और बताओ, मारपीट के हिसाब किताब क्लियर हो रहा है। अब सोच तो लेंगे लेकिन इतना भारी हो रहा है। और थोड़ा अच्छी बातें जो जो दिल को खुश करें। ये ठीक है कि हिसाब किताब भी चुकतू हो रहा है, कोई लेने आए हैं कोई देने आए हैं, तभी तो नाते बने हैं ना, नाते ऐसे नहीं बनते। एक तो ऐसी आत्माओं के लिए आधा घंटा रोज अच्छा योग किया जाए। एक केसा जी था, मैंने उसको कहा, उसका पति उसको बहुत तंग कर रहा है, पहले से ही कर रहा है, ज्ञान में आने से नहीं, तो ज्ञान में अभी आई है 2 साल से। मैंने कहा क्यों आई ज्ञान में, तो पति से दुखी हो गई। तो मैंने कहा पहले तो अब पति को धन्यवाद दो, क्यों, अगर वो तुम्हें दुखी न करता तो तुम्हें भगवान न मिलता, इसलिए उसको रोज शुक्रिया किया करो, बाबा के साथ उसको भी, तुमने बहुत अच्छा किया। और मैंने उसको कहा तो हंसने भी लगी, मैं कहा तुमने भी उसको बहुत तंग किया पिछले जन्म में, वो तो रिटर्न हो रहा, समझो तुम हल्की हो रही हो, इसलिए परेशान न हो जाओ, हल्के हो जाओ थोड़े। जब हम ज्यादा सोचते हैं ना किसी बात पे तो मन भारी होता है, बीमारियां बढ़ती हैं। मैं क्लास में सुनाया करता हूँ, मुझे एक बड़े डॉक्टर ने बताया कि भाई तुम क्लास कराते हो, मेरी एक बात भी सुनाया करो। मैंने कहा बोलो, कि घुटने दर्द उसको ज्यादा होते हैं जिसके मन पर बोझ ज्यादा हो, क्योंकि कई कई जो पतले हैं भारी वजन नहीं है उनका भी घुटने दर्द, और कई कई बहुत मोटे हैं लेकिन मजे से घूम फिर रहे हैं, घुटने दर्द है ही नहीं, क्योंकि वो खुश बहुत रहते हैं। वजन सिर पे आया माना दिमाग पर, तो घुटनों पे आएगा, इसलिए अपने को थोड़ा हल्का रखना ही है, कुछ चीजों को स्वीकार करना है। ये एक इम्पोर्टेंट बात सभी याद रखेंगे, स्वीकार करें कुछ चीजों को। स्वीकार करके ये नहीं कि अलबेले हो जाएंगे, स्वीकार करके मन हल्का हो, फिर योग बल से समस्याओं को ठीक करें। आप ये अच्छी तरह याद रखें, जिस घर में योग अच्छा होगा, जिस घर में माहौल पवित्रता का होगा, वहां समस्याएं ये बच्चों की जो आ रही है ना आएंगी नहीं। देखो एक बच्चे की समस्या, माँ की समस्या, कल ही आई वो, बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं 10वीं क्लास में है केवल, कहता है मैं तो नॉन वेज ही खाऊंगा। कहा हमारे घरों में बनता ही नहीं, हम जब से हैं उनके पहले के परिवार कोई नॉन वेज नहीं खाते, अब ये 10वीं क्लास में लड़का आया है कहता है मैं तो नॉन वेज ही खाऊंगा। मैंने कहा तो तुमने क्या कहा। कहा मैंने कहा मैं तो नहीं बनाऊंगी, खुद बना के खाओ। मैंने कहा इससे भी अच्छा कहो घर में शुरू ही ना करो, तुम्हें खाना तो बाहर खा के आओ, पैसे था उनके पास, पैसे वाले हैं। तो देखिए ऐसी समस्याएं लोगों के पास आ रही हैं। कई माताएं तो बहुत टाइट होती हैं, एक ने कर दिया, लड़का बुरे संग में था, रात को 12 बजे आए, खाना खिलाओ गरम खिलाओ, उसने दरवाजा ही नहीं खोला, जहां से आया वहीं खा के आओ, और आ गई, अगले दिन सीधा हो गया, 9 बजे आने लगा। और कुछ माता है, हाय मेरा लाल अब दरवाजा नहीं खोलूंगी, कहां जाएगा, तो रोज बढ़ती जाएगी समस्या। थोड़ा सा कहीं कहीं स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी होता है, होता है या नहीं। अगर इस मोह ममता में रहेंगे तो दूसरों का भी कल्याण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बच्चों पर बहुत ज्यादा है। अब जिन दोस्तों के साथ वो 12-1 बजे तक रहा, वो थोड़ा उसे भोजन खिलाएंगे कि हमारे घर में आके सो जाओ, एक ही दिन में अकल ठिकाने आ गई। लेकिन माता थी बड़ी स्ट्रांग, पति भी कहता खोल दो ना कहाँ जाएगा, बिल्कुल नहीं खोलूंगी, जहां से आया वहीं जाओ। ताकत है माताओं में ऐसे, मैं सच्ची घटना सुना रहा हूं, ये काल्पनिक नहीं है, ताकतवर बनना है तो मन जरा भी चिड़चिड़ा न हो। सोच लो होता तो है, ज्यादा काम हो रहा है, कोई बीच में टोका टोकी भी कर रहा है, चिड़चिड़े होंगे या नहीं बोलो, होते हैं, बीच में टोका टोकी भी हो रही है, काम भी ज्यादा है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बीमारी भी है फिर भी काम करना पड़ रहा है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और भी कई परिस्थितियों में मनुष्य को हल्का गुस्सा भी आता है। कैसे बचेंगे इससे बोलो, आपको ही बताना, बचते होंगे आप, अनुभव बता दो, बहने बताएं, बोलो बोलो, ठीक जो भी बोलो बाबा, ओम शांति बोलो, बड़ी अच्छी बाबा हटाओ। पहले से ही लंबे समय से अच्छे अभ्यास चले हो, उस टाइम काम नहीं करेगा कोई संकल्प, उस टाइम तो संकल्प आएंगे भी नहीं, क्योंकि जब जरा भी गुस्सा आ जाता है तो गुस्से का पहला वार होता है बुद्धि पर, वो सब कुछ भुला देगा, कि बाबा को बुलाना है क्या, वो भी भूल जाएगा, सब भूल जाएगा, इसलिए लंबे समय से हल्का रहने की नेचर बन जाए और अपने हर कर्म को एंजॉय भी करें, आनंद लें, और थोड़ा बोलेंगे कम तो बोलो भाई, बोलेंगे बोलेंगे कम तो गुस्से पे कंट्रोल रख सकेंगे, बात बढ़ेगी भी नहीं बिगड़ेगी भी नहीं, लेकिन जब ज्यादा बोलते हैं, देखो ज्यादा बोलने से ये नुकसान होता है, दिमाग की एनर्जी नष्ट बहुत होती है, और फिर जहां हमें जरूरत पड़ती है वहां हम अपने को कमजोर पाएंगे। दूसरा एक कारण जिस पे ध्यान देना है, कामनाएं ज्यादा न हो, कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं। हर व्यक्ति में कामना होती है, हमारे साथ रहने वाले ऐसे करें, भई आप सिलाई का काम ही कर रहे हैं, चाहेंगे कोई गलती न करे, ये चार लोग काम कर रहे हैं, कोई भी गलती न करे, सब ठीक ठाक हो, हर व्यक्ति यही चाहता है, लेकिन हर एक के बुद्धि अलग, हर एक की कार्य शक्ति अलग, हर एक अपने काम में कितना परफेक्ट है वो भी अलग। सिखाना है, अगर हम सिखाने का संस्कार बना लें तो अनेक बातों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जब सिखाते नहीं, हम सोचते हैं सबके काम परफेक्ट हों, वहां दिक्कत पैदा होती है, हम ही परफेक्ट नहीं बने तो कैसे होगा। अब कामनाएं तो सबकी, शिव बाबा भी पूरी नहीं कर सकता, प्रकृति पूरी नहीं कर सकती, हाँ अब कोई कह रहा है बारिश चाहिए और अच्छी, और कोई कह रहे हैं बंद हो जल्दी, तंग हो गए हम तो, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, क्या ये यहाँ बादल ही बादल, माताएं बोल रही हैं इनके ड्रायर में सुखवा दिया करो भाई, ड्रायर है दो बीघाट में, जिसको ज्यादा गीले हो सुखवा के आ सकते हैं, हम लोग भी ऐसे ही कर लेते हैं, कभी गीले हो गए कुछ कपड़े, ड्रायर में डाल दिए सूख के मिल जाते हैं। तो कामनाओं को कम करेंगे, चिड़चिड़ापन भी कम हो जाएगा, सहज भाव से जीने की आदत डालनी चाहिए, नहीं तो भगवान ने जो आज टाइटल दिया वो थोड़ा भारी है, उसको भी याद करना है, जब गुस्सा आए नहीं भूत नहीं आज कहा, तो भारी टाइटल दिया मैं नहीं कहूंगा उसको, बाबा के मुख से ही ठीक लगता है। बाबा तो हमें बंदर भी कहता है, हम खुश हो जाते हैं ना, वाह भगवान ने बंदर का टाइटल दिया आज हमें, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं दे सकते। बहुत खुश रहना है, बाबा का शब्द आ गया, लाइन छोटी सी, खुशी नहीं तो जीवन भी क्या, कल की मुरली में आया, अव्यक्त मुरली में। तो अगर भगवान के बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा, अपने से बात करें। हमें जो प्राप्ति हुई है वो चारों युगों में सबसे बड़ी, वो सभी मनुष्यों की भेंट में सबसे ज्यादा, धनवानों को वो प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति हमें बहुत है, है या नहीं? मैं सामने माताएं ज्यादा इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, कईयों के चेहरों से खुशी नहीं नजर आ रही, लगता है कुछ नहीं मिला अब तक। पहला क्या मिला? पहले तो भगवान मिला। अगर इसे याद ही रखेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। कोई संसार में कह भी सकता है क्या कि भगवान मिला? शंकराचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े सन्यासी, किसी को कहना भी नहीं आए, कह गए कैसे, मिला ही नहीं बेचारों को। तो इतनी बड़ी प्राप्ति हुई है सबको, हाथ उठाएंगे? देखो दुनिया में कोई नहीं उठा सकता। अगर सन्यासियों की सभा बैठी हो 500 की और हम हाथ उठवा दें कि किस किस को सत्य ज्ञान मिल गया, किस किस की खोज खत्म हो गई, एक भी हाथ नहीं उठाएगा, चाहे बड़े से बड़ा विद्वान बैठा हो जिसको चारों वेद याद हों, तो भी कहेगा अभी खोज पूरी नहीं हुई है। और आप सबको सत्य ज्ञान मिल गया, कुछ जानना बाकी है, तो कितनी बड़ी प्राप्ति है सत्य ज्ञान, स्वयं भगवान की प्राप्ति। और भाग्य, बोलो भाग्य के लिए क्या कहेंगे? भाग्य विधाता ही हमारा हो गया, कलम ही हमें थमा दी के लिख दो जितना लिखना चाहो अपना, सोच के तो देखो। माताओं को मैं कहूं आपको दो बच्चे हैं, आपको कलम दे दी जाए कि अपने दोनों बच्चों के भाग्य लिख दो, एक पेज दिया गया है, क्या क्या लिखोगे? सब कुछ में क्या क्या? देखो माताओं के चेहरे खिल गए ये सुनते ही। और भगवान ने हम सबको कलम थमा दी, लिख दो अपना भाग्य, एक जन्म का नहीं, 21 से भी ज्यादा, पूरे 84 जन्मों का भाग्य लिख सकते हो। क्योंकि जो स्थिति हमारी अब बन जाएगी ना, वही द्वापर युग से भी तो चालू रहेगी। संस्कार थोड़ा एकदम डाउन होके नीचे आ जाएंगे, जो आत्माएं यहाँ संतुष्ट हो गई वो पूरा कल्प संतुष्ट ही रहेंगे। जिन्होंने यहाँ खुश रहने का संस्कार डाल दिया द्वापर से, वो बहुत खुश रहेंगे। जिनको यहाँ सच्ची शांति अनुभव हो गई, द्वापर से भी शांति शांति होगी उनके पास। जिनमें यहाँ देने का संस्कार पड़ गया, वो द्वापर से भी देते ही रहेंगे, देते रहेंगे तो बहुत मिलता रहेगा। तो हम बीज डाल रहे हैं 84 जन्मों के, तो कलम आपके हाथ में है। इंक भी चाहिए या कलम से ही काम चल जाएगा? आजकल तो बिना इंक के ही आ रहे हैं ना सब कुछ, सब मोबाइल पे ही आ जाता है। तो इसका फायदा उठाना है, बहुत खुश रहना है। मैं आपको एक सुंदर संकल्प दे रहा हूं बाबा का, खुशी हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है, और खजाने को संभाल के रखा जाता है। आपके पास कोई बहुत कीमती ज्वेलरी हो, सभी आप हो या मैं हूं, उसे कितना हम संभाल के रखते हैं, ऐसे ही तो नहीं छोड़ देंगे ना। हमारी खुशी भी हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है, इसे संभाल के रखना है, सोचना, इस पे विचार करना, हमें इसको संभाल के रखना है। ये नहीं छोटी बातों में जिनकी कीमत बहुत कम हो हम अपना ये अनमोल खजाना खो दें, इस पे चिंतन करना है। सारे दिन में, एक हफ्ते में देख लो, एक हफ्ते में कौन सी ऐसी छोटी बातें आई जिनके कारण हमने ये अनमोल खजाना खत्म कर लिया। और एक बार ये खजाना खत्म हो तो लंबा समय तक चलता है ना खत्म, उसको दोबारा लाने में मेहनत पड़ जाएगी। लेकिन हम उन बातों को साथ साथ खत्म करना सीखें जो हमारे खुशी के खजाने को चुराते हैं। एक संकल्प ही आया कोई, आप आराम से बैठे हैं, फर्स्ट क्लास योग किया, सब अच्छा, कोई एक संकल्प आ गया पास्ट का खराब सा, खुशी गुम होने लगी। आपको याद समझ में भी नहीं आया खुशी क्यों गुम हुई है, वो संकल्प सूक्ष्म रूप से अंदर काम करने लगा। ये बहुतों के साथ होता है, इसलिए बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में एक बहुत सिंपल सी और बड़ी सुंदर बात कही। इस ब्राह्मण जीवन में जो जो अच्छे अनुभव प्राप्त किए हैं उन्हें भी याद किया करो, ये भी मनमना भव है, मगन करेगा ना हमें। सबको अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं, हरेक को जो जीवन में विशेष प्राप्ति हुई है जिसके कारण आप बाबा के पास आ गए हैं उसको याद किया करें। जीवन में अनुभव सबके पास अच्छे अच्छे हैं या नहीं, बाबा की मदद के भी अनुभव हैं। हमारे कहीं कहीं पुरसाद से जो सुंदर अनुभव हुए वो भी हमारे पास खजाना है। सेवाओं में जो हमें अच्छे अनुभव हुए वो भी खजाना है। देखो मैं एक चीज अपने को भी कहा करता था, कभी कभी बाहर भी कह देता था, तब हम क्लास नहीं कराते थे। सीजन आया, पार्टी आने वाली है, तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है, सीजन आया तबीयत ठीक। ये अनुभव एक बार नहीं 10 बार हुए होंगे। जैसे ही कार्य ज्यादा हुआ तबीयत ठीक, तो मैं कहा करता था बाबा भी बड़ा होशियार है, जब काम लेना होता है पूरा ठीक कर देता है हमें, और जब पूरा हो गया तो कहता अभी अपना कर्म भोग चुक तू करो। ये अनुभव होते थे ना सुंदर से सुंदर। तो बाबा की सेवाओं में उसकी मदद के, उसके आह्वान के, उसको बोझ देने के सुंदर अनुभव भी तो हैं, उन्हें याद करने से भी हम बाबा के प्रेम में मग्न हो जाते हैं। तो हमें खुश रहना है। खुश रहने का अर्थ हंसना नहीं होता, मन खुश रहे, अंदर खुशी रहे बहुत ज्यादा, मन में उदासी ना आए, निगेटिविटी ना आए। इसको रखना इसलिए भी जरूरी है, आजकल बहुत ध्यान देंगे आप इस बात पर, मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, मतलब तूफान हो जाएगा 2-4 साल में मानसिक रोगों का। लेकिन जो बहुत खुश रहते हैं उनके पास ये रोग नहीं आएंगे। इसलिए कितनी बड़ी दवाई हो जाएगी जानते तो सब हैं, खुशी सबसे बड़ी दवाई भी है, खुराक भी है। लेकिन अब आने वाले समय में ये अनुभव होगा जो ब्राह्मण ज्ञान चिंतन से या बाबा की सुंदर बातों को याद रख के खुश बहुत रहते हैं वो मानसिक रोगों से मुक्त हैं। वो मुस्कुराएंगे और दूसरों को वाइब्रेशंस देकर उनको भी मानसिक रोगों से मुक्त करेंगे। और ये परिस्थिति हरेक के घरों में भी आ सकती है, ये नहीं कोई और होगा, ये परिस्थिति कई ब्राह्मणों के पास भी आ जाएगी। क्यों उनके पास आएगी, मैं जरा कुछ बातें ओपनली बोल देता हूँ बाबा की, जिन्होंने ब्राह्मण बनकर सूक्ष्म पाप बहुत किए, जिन्होंने ब्राह्मण बनकर दूसरों की बद्दुआएं बहुत ली। और बद्दुआएं भी किनको मिलेंगी, किनकी मिलेंगी, ब्राह्मणों की। और ब्राह्मणों में न जाने कौन कितनी पवित्र आत्मा है, ये हमें नहीं पता होता कभी कभी, कौन कितनी पुण्य आत्मा है, उसकी आहें निकल गई वो खा जाती है। तो ये मानसिक रोग संसार में भी और ब्राह्मण संसार में भी बढ़ेंगे। जिन्होंने अलबेलेपन में जीवन बिताया है, जिन्होंने ईश्वरीय अवज्ञाओं के साथ जीवन बिताया है, ये उनको ये समस्याएं बढ़ेंगी। तो बहुत खुश रहना है। टाइम हुआ क्या भाई? अभी तो है, कहाँ गीत बजा रहा। तो बहुत बहुत ये समस्याएं बढ़ेंगी, इसलिए खुश रहना है। इसलिए सभी को मैं एक होमवर्क देता हूँ। कौन कौन पढ़ना लिखना जानती है माताएं? लगभग सब भाई, तो सब 10 पॉइंट कल लिख लेना, खुशी में रहने के, जिनको याद करते ही मन खुश हो जाए। पहला पॉइंट वही लिखना जो पहले पहले आया, कौन मिला, कल की मुरली में था ना, दो शब्द याद रखो, भगवान और भाग्य। कितनी बड़ी चीज है, सुनते ही मन खुश हो जाता है। हम दूसरी बात इस तरह लिखना, जीवन की इस यात्रा के अंत में, 5000 साल चली ना यात्रा, अंत में भगवान हमारा साथी बन गया और उसने आते ही कहा, बोझ मुझे दे दो, हल्के होकर चलो, मैं साथ आ गया हूँ, लाओ बोझ। कोई फ्रेंड मिल जाए, दो अटैची उठाई हूँ, कह देगा ना, एक मुझे दे दो, क्यों दो भारी उठा रहे हो। बाबा तो दोनों ही ले लेता, लेकिन लेके भाग नहीं जाएगा, भर के दे देगा। तो बाबा साथी बन गया, खुदा दोस्त बन गया, सब कुछ देने आ गया, भाग्य का खजाना लेकर आ गया। 10 पावरफुल पॉइंट लिखना, क्या मिलने वाला है, शरीर छोड़ते ही कहाँ जाएंगे, कोई चिंता नहीं। लोगों को तो होता है पता नहीं, सांप बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, गधा न बन जाए, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। बाबा ने निश्चिंत कर दिया, शरीर छोड़ते ही देवता बनोगे, पहले घर जाओगे फिर देवता बन जाओगे, तो भविष्य भी बहुत सुंदर है। खुशी की ऐसी बातें लिखना। आपके पास कोई पैसा नहीं है लेकिन ज्ञान धन बहुत है। तो आज बाबा का जो श्लोक वरदान में था वो आपको याद दिला दूं, तुम्हें देखकर ऐसा ना लगे कि त्याग बहुत किया। लगता है कुछ साधु साध्वी घूमते हैं ना सड़कों पे, बड़े त्यागी हैं बेचारे, चेहरा सूखा हुआ, खाना भी नहीं खाया कई दिन से, बड़े त्यागी हैं, कितना भारी त्याग है इनका। और हमें देखकर क्या कहें, कितना बड़ा भाग्य है इनका। तो लोग आकर्षित होकर बाबा के पास आ जाएंगे। तो हमारा त्याग सूक्ष्म, भाग्य प्रत्यक्ष चेहरों से, ऐसा हमें चिंतन करके जीवन को खुशियों से भरना है। वैसे भी बाबा के बच्चों के चेहरे पे जो रौनक होती है वो संसार में किसी के चेहरे पे नहीं होती, क्योंकि प्राप्तियां ही ऐसी अच्छी है ना। एक पुलिस वाला एयरपोर्ट पे चेक करते हैं ना, मुझे कहता, हम बहुत जाते हैं तो ओम शांति करते हैं, वो कहते हैं भाई ओम शांति वाले मुस्कुराते हैं, बाकी कोई नहीं मुस्कुराता। मैंने कहा इनको मुस्कुराना सिखाने वाला बहुत बड़ा है भाई, तुम भी सीख जाओगे, आ जाओ। चलो ओम शांति।